SBS हिंदी सेवा के सभी सुनने वालों को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। आइए सुनते हैं भारत के समाचार। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन का दस्तक देना दुनिया के अन्य देशों के साथ साथ भारत में भी चिंता का सबब बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आपातकालीन बैठक बुलाकर इस नए संक्रमण से निपटने के लिए राज्यों को तैयार रहने और कोरोना मामलों की जाँच में तेजी लाने को कहा है। खतरे का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके अनुसार 12 देशों को जोखिम श्रेणी में रखा गया है। इन देशों में यूनाइटेड किंगडम सहित यूरोप के देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इसराइल शामिल हैं। यहाँ से आने वाले यात्रियों को हवाई अड्डों पर ही अतिरिक्त निगरानी के अधीन रखा जाएगा। उन्हें कोविड टेस्ट से गुजरना होगा और किसी भी कनेक्टिंग फ्लाइट को छोड़ने या लेने से पहले जांच के परिणामों का इंतज़ार करना होगा। टेस्ट नेगेटिव होने पर भी उन्हें 7 दिनों के होम क्वारंटाइन का पालन करना होगा। सभी यात्रियों को ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर निर्धारित यात्रा से पहले पिछले 14 दिनों के यात्रा विवरण सहित सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करना होगा। COVID-19 RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। कोविड रिपोर्ट की प्रामाणिकता के संबंध में भी डिक्लेरेशन देनी होगी। कई राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं और RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने इस विषय में सूचना दी।
कोरोना का नया वेरिएंट आने के कारण बहुत ही मुंबई में चिंता बढ़ गई है। जो प्रवासी आ रहे उनको, जो दक्षिण अफ्रीका हो या दूसरे देश से आते कंट्री से, तो उनको जीनोम सीक्वेंसिंग का चेक करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे देश में आते तो उनको क्वारंटाइन करके वो सब चेकिंग होने के बाद ही छोड़ा जाएगा।
इस बीच भारत में कोरोना संक्रमण की दर 0.8 पहुंचने के बावजूद कर्नाटक के बेलगांव में एक मेडिकल कॉलेज में टीकाकृत छात्रों और ओडिशा के मयूरभंज इलाके के एक स्कूल में कोरोना विस्फोट से सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। आज शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए तमाम भाजपा सांसदों को व्हिप जारी कर मौजूद रहने को कहा गया है। कृषि कानून और अन्य मुद्दों पर आम सहमति बनाने के लिए सरकार ने रविवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रधानमंत्री मोदी आशानुरूप नहीं शामिल हुए। पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा,
आज जो ऑल पार्टी की मीटिंग हुई, इसमें कम से कम 15-20 विषय पे चर्चा हुई और सभी पार्टियों ने ये डिमांड किया, खास करके जो किसानों का मुद्दा है, MSP और इलेक्ट्रिकल बिल, इसके बारे में सरकार तुरंत एक्शन लेना चाहिए और MSP के बारे में एक कानून बनाना चाहिए।
आम आदमी पार्टी ने अपने सांसद संजय सिंह को सर्वदलीय बैठक में बोलने न दिए जाने को मुद्दा बनाते हुए बैठक का बहिष्कार किया। श्री सिंह ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा,
मैं किसानों का मुद्दा उठा रहा था। मैंने साफ तौर पर कहा कि भाई MSP की गारंटी का कानून इसी सत्र में लेके आइए। कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा है कि विद्युत संशोधन विधेयक नहीं आना चाहिए। आपने बिलों की लिस्ट में विद्युत संशोधन विधेयक शामिल कर रखा है। मैंने पंजाब का मसला उठाया कि पंजाब में आपने BSF का कार्य क्षेत्र 50 किलोमीटर बढ़ा दिया, वहाँ पर अशांति फैली हुई है। आप लोग जिन्ना जिन्ना करते घूम रहे हैं, किसान गन्ना गन्ना कर रहा है, आप कुछ सुनने को मानने को तैयार नहीं, ना पार्लियामेंट में बोलने देते हैं, ना ऑल पार्टी मीटिंग में बोलने देते हैं, तो ऐसी मीटिंग में रह के क्या फ़ायदा है।
वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने विपक्षी पार्टियों से संसद को सुचारू रूप से चलाने की बात कही।
ऑल पार्टी मीटिंग में 31 पार्टीज पार्टिसिपेट किया, 42 लीडर्स फ्रॉम वेरियस पार्टीज पार्टिसिपेट किया है, बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुआ है, कंस्ट्रक्टिव सजेशन आया है। सरकार के तरफ से माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा ये जो कुछ भी सजेशन आया है पूरा हम ध्यान में रखेंगे और सरकार नियम के अधीन जो कुछ भी चर्चा माननीय स्पीकर और माननीय चेयरमैन परमिट करते हैं वो सब चर्चा के लिए सरकार तैयार है। सरकार के तरफ से हमने यही निवेदन किया है बिना डिसरप्शन सदन चले, सदन का कार्यवाही चले।
तृणमूल कांग्रेस ने बैठक में सरकार से महिला आरक्षण विधेयक बिल पेश करने को कहा है। वहीं लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का विधेयक लाने की बात भी सरकार को कही है। कई दलों ने नागरिक संशोधन कानून को वापस लेने का मुद्दा भी उठाया, जिनमें एनडीए मोर्चे का सदस्य दल एनपीपी भी शामिल है। संयुक्त किसान मोर्चे ने 29 नवंबर को निर्धारित संसद मार्च फिलहाल स्थगित कर दिया है। संसद सत्र के शुरू होने से पहले मोदी सरकार को अपनी ताकत दिखाते हुए संयुक्त किसान मोर्चे ने मजदूरों को साथ लेते हुए मुंबई के आज़ाद मैदान में किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया। इस महापंचायत में किसानों के मुद्दों के अलावा लेबर कानूनों की वापसी की बात भी रखी गई। इस बारे में किसान नेता राकेश टिकैत ने जानकारी दी।
अभी सरकार ठीक लाइन पे बातचीत को नहीं आई, सरकार षड्यंत्रकारी है, वो भी किसान समाज को मजदूर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। आज भी वो शिक्ष में है कि किसानों को कैसे नीचा दिखाकर इनको घर भेज दिया जाए, उनके मन साफ नहीं है, अभी वो बातचीत करने को कोई तैयार नहीं है। अभी हमारे मुद्दे हैं, कहते हैं कि अभी 10 दिन का एक एलिगेशन सम्मेलन चलेगा, एलिगेशन सम्मेलन, उसमें सचेत रहना, हमको सबको घबराना नहीं, अभी चलेंगे। जितने भी हमारे पेपर के साथी हैं वे एक ही क्वेश्चन आपसे करेंगे कि 3 कानून वापसी हो गए, आप घर क्यों नहीं जा रहे। ये 10 दिन का अभियान चलेगा, उसमें सचेत रहना, घबराने की जरूरत नहीं। उससे
उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जिले के गांव में एक दलित परिवार के 4 लोगों की जघन्य हत्या पर सियासत फिर से गर्म हो उठी है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने परिवार के अन्य सदस्यों से बात करने के बाद योगी प्रशासन पर हमला करते हुए उत्तर प्रदेश में दलितों की स्थिति दयनीय बताई।
जो वीडियो मुझे दिखाए गए हैं और जो मुझे बताया गया है कि जिस तरह से ये हुआ है, मैं खुद हिली हुई हूँ और दहशत में है परिवार। सब परिवार के सदस्य ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कि हमारे साथ क्या होगा। पुलिस से उनको सहयोग नहीं मिला। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे मैं बार बार हर 2 दिन हर 3 दिन में आती हूँ, किसी से मिलती हूँ, ऐसा ही हादसा होता है। आगरा को देखिए, आगरा में क्या हुआ अरुण वाल्मीकि के साथ, हाथरस में क्या हुआ, यहाँ क्या हो रहा है। तो जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है तो क्या सब चुप बैठे हैं, सब देखते ही रहेंगे क्या? तो फिर संविधान दिवस मनाने का क्या मतलब है?
मृत परिवार के रिश्तेदारों ने तथा कथित उच्च जाति के पड़ोसियों से रंजिश की बात कही थी। घटना के बाद प्रशासन ने थाना अध्यक्ष समेत 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। पुलिस अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें मारी गई लड़की का तथा कथित प्रेमी भी शामिल है। और आइए अब सुनते हैं खेल जगत के समाचार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के 4थे दिन का खेल समाप्त होने पर भारत ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। एक बार फिर मध्य और निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भारत की पारी को संभाला। श्रेयस अय्यर ने पहली पारी में 105 रन और दूसरी पारी में 65 रनों का बेशकीमती योगदान दिया। पहली पारी में अक्षर पटेल की घातक गेंदबाजी की बदौलत 49 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त लेने के बाद भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 234 रन बनाकर घोषित कर दी और इस तरह न्यूजीलैंड के लिए 284 रनों का मुश्किल लक्ष्य रखा। न्यूजीलैंड की दूसरी पारी की शुरुआत बेहद ख़राब रही। दिन के अंतिम ओवर में आर अश्विन की एक लेग स्टंप के काफ़ी बाहर जाती ऑफ ब्रेक गेंद पर अंपायर ने सलामी बल्लेबाज विल यंग को आउट करार दे दिया। डीआरएस का निर्णय देर से लेने के कारण न्यूजीलैंड को एक विकेट मात्र 4 रन पर खोना पड़ा। अब न्यूजीलैंड को पांचवें और आखिरी दिन जीत के लिए 280 रन और बनाने होंगे, जो बेहद मुश्किल लक्ष्य है। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पोलैंड को 2-8 गोल से हराकर भारत ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भुवनेश्वर में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम के उपकप्तान संजय कुमार ने पहले 2 मैचों में हैट्रिक करने के बाद आज फिर 2 गोल दागे। अरिजीत सिंह हुंडल और सुधीर चिरमाको ने भी 2-2 गोल करके भारतीय जीत पक्की कर दी। क्वार्टर फाइनल में बुधवार को भारत का मुकाबला पिछले वर्ल्ड कप की उपविजेता बेल्जियम से होगा। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। SBS हिंदी सेवा की ओर से आप सबको मनन कुमार का पुनः नमस्कार।